गुरुओं के तो आज नहीं बात ही नहीं, गुरुओं के जन्म दिन जो हम मनाते हैं ना, गुरु देह भाव में नहीं, गुरु एक द्वार है, वो सकार से निराकार की ओर ले जाता है। जय भाव, ये हमें प्रसाद हम दे दें,
कोई बात नहीं, बात
लो प्रभु जी।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
हेलो मंदी, नमस्कार।
काल विचार हमारा चल रहा था तत्त्वम पद का संशोधन। आप आए थे कल? उसका कुछ घटा कि नहीं, तत्त्वम पद का संशोधन है तो वो विषय बहुत कठिन पड़ता है। सबसे निष्कर्ष वाली बात वही है ना, जो षठ संपत्ति है या चतुष्टय साधन है वो भी समझ में आ जाता है धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत कठिन पड़ता है क्योंकि इसमें लक्षणा जो है, लक्षणा को समझना कठिन पड़ता है। फिर भाग त्याग लक्षणा कैसे करनी महावाक्य में, तो बात यही कल चली थी कि पहले हमारे को दो दो, हाँ दो दो, चाय पीने किसी ने नहीं, ठीक है। वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ की बात चली कि इसको जानने के लिए पहले दोनों अर्थों को समझना जरूरी पड़ता है, तभी हम लक्षणा कर पाएंगे, संशोधन कर पाएंगे, जब हमारे को वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ का पता चल जाए। तो शब्द की अर्थ कराने की जो सामर्थ्य है ना, शब्द में अर्थ का ज्ञान कराने की जो सामर्थ्य है उसको शक्ति कहते हैं। शब्द बोलने से अर्थ का ज्ञान होता है, वो शब्द में शक्ति होती है अर्थ का ज्ञान कराने की, उसको उस सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं।
तो बहुत बढ़िया लगता है।
उस शक्ति से जो अर्थ निकलता है ना, उस अर्थ को बोलते हैं शक्य अर्थ, उसी को बोलते हैं वाच्य अर्थ। शक्य अर्थ बोलते हैं उसी को वाच्य अर्थ बोलते हैं। तो फिर वाच्य अर्थ और शक्य अर्थ जो है ना, उसको जब घटेगा हमारे को समझ में आएगा ना, तो फिर अपने आप घट जाएगा। शक्ति वृत्ति से जो अर्थ निकलता है उसको शक्य अर्थ कहते हैं, और जो शक्य अर्थ होता है वाच्य अर्थ होता है उच्च वाच्य अर्थ के द्वारा
उनको परिचालित करोगे
सब सब। हां सर संजय बोलिए। हां
शक्ति वृत्ति से जिस अर्थ को हम जानते हैं, उस अर्थ के द्वारा जो शब्द का अर्थ के साथ परंपरा से संबंध होता है ना, उसको बोलते हैं लक्ष्य अर्थ। कल भी हमने विचार किया था ना कि जैसे गंगा शब्द बोलने से सीधा गंगा जब बोला हमने तो गंगा का प्रवाह ये अर्थ निकलता है। गंगायाम घोषा जब बोलेंगे कि गंगा में घोष है, गंगा में बाड़ा है, घर है, तो गंगा का प्रवाह अर्थ निकलता है। शक्ति से यही अर्थ निकलता है, शक्ति वृत्ति से शक्ति अर्थ मतलब गंगा का प्रवाह। तो गंगा के प्रवाह में घर हो नहीं सकता, तो जब गंगा के प्रवाह वाला अर्थ बाद हो गया ना, वाच्य अर्थ का बाद हो गया, तो तब हमारे को लक्षणा करनी पड़ती है। तो वाच्य अर्थ का बाद होने पर जो वाच्य अर्थ का संबंधी है ना, गंगा का तीर, गंगा का किनारा, उसका ज्ञान होता है कि जो घर है वो गंगा के किनारे पर है। तो शक्ति वृत्ति से जो अर्थ हमने जाना ना, उस अर्थ के द्वारा शब्द का अर्थ के साथ जो परंपरा से संबंध होता है उसको बोलते हैं लक्ष्य अर्थ। तो जब हम तत्त्वम का दोनों का दोनों दोनों अर्थ जानेंगे ना, तब संशोधन होगा कि तत्पद का वाच्य अर्थ क्या है। तत्पद का वाच्य अर्थ जब तत्पद बोलते हैं तो वह ईश्वर अर्थ आता है उसका, ईश्वर। तो ईश्वर कहते ही सगुण ब्रह्म आ जाता है सामने। जब ईश्वर बोलेंगे तो ईश्वर का अर्थ है सगुण ब्रह्म, जो माया सबल है, माया से युक्त है, उसको बोलते हैं ना, माया में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ना उसको बोलते हैं। तो वो माया में पड़ने वाला प्रतिबिंब रूप जो ईश्वर है ना, जब ईश्वर बोलते हैं तो ईश्वर की उपाधि माया भी साथ में आ जाती है, ईश्वर के धर्म ही आ जाते हैं। क्या है वो? जन्म स्थिति और लय का कारण है और सर्वअंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा अर्थ हमारे को तत्पद का वाच्य अर्थ ऐसा सुनाई पड़ता है। जब तत्पद का वाच्य अर्थ ये है कि जो जन्म स्थिति लय का कारण है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, ऐसा जो ईश्वर है वो तत्पद का वाच्य अर्थ है। और त्वम पद का वाच्य अर्थ क्या है? जब त्वम पद बोलेंगे तो त्वम पद का वाच्य अर्थ है जो आवागमन जिसका होता है, जन्म मरण में आता है, लोक परलोक में आवागमन होता है, कर्ता भोगता पना जिनके धर्म है, अविद्या जिसकी उपाधि है, ऐसा जीव आता है, चिदाभास जिसको हम बोलते हैं, यह त्वम पद का वाच्य अर्थ है। तो लक्ष्य अर्थ, तत्पद का लक्ष्य अर्थ क्या है? ब्रह्म। इन धर्मों से रहित, जन्म स्थिति लय से रहित, कर्ता भोक्तापना से रहित जो शुद्ध ब्रह्म है वो तत्पद का लक्ष्य अर्थ है। और त्वम पद का लक्ष्य अर्थ क्या है? साक्षी, जिसमें जन्म मरण आदि धर्म नहीं है, सुख दुख आदि, कर्ता भोक्तापना आदि जिसमें कोई धर्म नहीं है। ऊपर आ जाओ संत जी। नहीं नहीं यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं आ जाओ ना, अरे यहाँ आओ, नहीं आ जाओ, अरे ऊपर आओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ। नहीं नहीं यहाँ बैठो। ये त्वम पद का लक्ष्य अर्थ है, जिसमें जन्म मरण कर्ता भोगता पना आदि कुछ नहीं ना, वो हो गया लक्ष्य अर्थ। तो जब महावाक्य में हमने महावाक्य के द्वारा तत्त्वम पद की ऐक्य करना, एकता करनी है, तो उसके लिए लक्षणा बताई। लक्ष्य अर्थ जो है लक्षणा से आता है। जब शक्ति वृत्ति वाला अर्थ वाच्य अर्थ लेते हैं तो एकता नहीं हो पा रही, क्योंकि धर्म का विरोध हो रहा है, स्वरूप का विरोध हो रहा है, तो एकता नहीं हो पा रही। तब हमारे को लक्षणा करनी पड़ती है, लक्ष्य अर्थ को देखना पड़ता है। तो तत्पद का लक्ष्य अर्थ क्या है? जो शुद्ध है, निराकार है, निरालंब है, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वो तत्पद का लक्ष्य अर्थ है। और त्वम पद का लक्ष्य अर्थ भी वही है, जो साक्षी है, कर्ता भोक्ता आदि रहत है, जिसमें भ्रांति नहीं है, तीन अवस्थाओं से परे है, तीन शरीरों से परे है, पांच कोशों से परे है, ऐसा जो साक्षी है वो तम पद का लक्ष्य अर्थ है। तो जब इन दोनों का ऐक्य करना होगा, दोनों को एक कैसे करेंगे, भाग त्याग लक्षणा से, जहता जहत लक्षणा से। जहता जहत का कल भी बताया था कि जहत का अर्थ होता है कि त्याग देना, जो वाच्य अर्थ है उसका पूरे का त्याग करना, जहत लक्षणा होती है। और अजहत का अर्थ होता है कि वाच्य अर्थ का त्याग ना करके उसके संबंधी का ग्रहण करना साथ में। जहां पर ना जहत लक्षणा से काम चल रहा है ना अजहत लक्षणा से काम चल रहा है, जब तक तुमने हमने लक्षणा करनी है तो भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग का अर्थ होता कि जो कुछ विरोधी अंश है उसको छोड़ना है और कुछ का ग्रहण करना है। तो यहाँ पर विरोधी अंश हैं कि जो ईश्वर में जन्म स्थिति लय का कारकपना है, उसमें सर्वशक्तिमानपना है, उसमें अंतर्यामता है, ये उसमें धर्म है, और उसकी उपाधि जो माया, उसकी उपाधि माया, और ईश्वर में रहने वाले जो धर्म हमने माने हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। और जीव की जो उपाधि अविद्या है उसको छोड़ेंगे, और जीव के जो धर्म है उसको छोड़ेंगे, कर्ता भोगतापना, जन्मना मरना, सुख दुख आदि भोगना, ये जितने धर्म हैं इनको छोड़ देंगे, ईश्वर के धर्म को छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचेगा, चेतन चेतन बचेगा। तो चेतन दोनों एक हैं, चेतन में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार जब हम चिंतन करेंगे तब हमारा उस तत्पद के साथ ऐक्य होगा। तम तत्पद का संशोधन का अर्थ यही है कि उसके विरोधी अंश का त्याग करके तब जो बाकी बचता है ना अवशेष, ब्रह्म और साक्षी, उनकी दोनों की एकता होती है। जीव ब्रह्म की कभी एकता नहीं हो सकती, जीव की और ईश्वर की नहीं हो सकती कभी। ईश्वर भी मिथ्या है, जीव भी मिथ्या है, दोनों ही मिथ्या है। ईश्वर भी सत्य नहीं है, ईश्वर भी कल्पना है, ईश्वर भी, क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो केवल माया के द्वारा भास रहा है ईश्वर। जब माया नहीं रही तो ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, जब अविद्या नहीं है तो जीव भी नहीं है, दोनों उपाधि है ना वो, तो उसको हटा देंगे तो ना जीव है ना ईश्वर है, कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्म ही बचेगा। इसलिए ईश्वर की कल्पना में जब तक हमारे को अज्ञान है, आवरण है, तभी होती है, और जीवपना में हमारा तभी तक भासता है। जब माया और अविद्या को छोड़ देंगे, उपाधि को, तो उसका कार्य जो है ना वो भी सारा नष्ट हो जाएगा। कारण के नाश होते ही कार्य नाश हो जाता है। तो ईश्वर में जो जन्म स्थिति लय का आदि जो भासता है ना, ये जन्म भी ईश्वर करता है, लय भी ईश्वर से होती है, पारणा भी ईश्वर से होती है, वो सर्वअंतर्यामी है, सर्वशक्तिपना है उसमें, ये सब माया के कारण भासता है। जब उसका कारण हट जाएगा तो ईश्वर में कार्यपना में कुछ नहीं बचेगा। उसी प्रकार जीव में जो अविद्या उपाधि के कारण आना जाना, जन्मना मरना, सुख दुख भोगना, ये सब अविद्या के कारण है। जब उपाधि हट जाएगी तो उपाधि का जो कार्य था ना उसके द्वारा खड़ा किया हुआ वो भी हट जाएगा। सब इसी के कारण हमारे को भासता है। इस प्रकार चिंतन जब करेंगे तब फिर हमारे को अपने स्वरूप में स्थिति हमारी होगी। कई दृष्टांत दिए हैं इसमें ग्रंथकारों ने, कहते हैं भी तत् और त्वम पद के लक्ष्यार्थ की एकता करने के लिए आपने कहा कि तत् और त्वम पद के लक्ष्य की एकता करो, तो इसमें कोई दृष्टांत बताइए हमारे को, लौकिक दृष्टांत क्या है, कैसे कैसे एकता होगी। तो ये कहते हैं कि जैसे घट रूप उपाधि सहित घटाकाश बोलते हैं ना, जब तक घड़ा है तब तक उसके अंदर रहने वाला जो आकाश के उसका नाम है घटाकाश। मठ है ये, मठ इसको बोलते हैं, जो कमरा है इसमें रहने वाले आकाश का नाम है मठाकाश, क्योंकि ये उपाधि लगी हुई है ना, जब तक घाट और मठ दो उपाधि है तब तक जे दोनों आकाश एक नहीं हो सकते, घाट वाला और मठ वाला, इनका उपाधि के रहते विरोध है, कभी भी एक के नहीं हो सकता दोनों आकाशों का। घाट वाला आकाश अलग है, मठ वाला अलग है, लेकिन घाट उपाधि हटा दो मठ उपाधि हटा दो तो आकाश एक हो जाएगा। उसी प्रकार हम जब उसके साथ एकता करनी है तो उसके धर्मों को, उसकी उपाधि को छोड़ेंगे, अपनी उपाधि अपने धर्म को छोड़ेंगे, तब हमारा कोई विरोध नहीं है। जब तक उपाधि लगी हुई है तब तक एक के नहीं हो सकता। दूसरा दृष्टांत ये देते हैं कि एक दीपक जल रहा है हांडी के बीच में, हांडी पड़ी है, एक हांडी कौन सी है, एक कांच की है एक मिट्टी की है, दो हांडी पड़ी है ना घड़ा, उसके अंदर दीपक जल रहा है दोनों में, तो दोनों जो दीपक जल रहे हैं उनका एक नहीं हो सकता कभी भी। कांच वाली हांडी वाला दीपक अलग है, उसके अंदर जो जल रहा है ना दीपक उसका कहते विरोध है, जल रहा है ना वो, तो उनका ऐक्य नहीं हो सकता। अग्नि तो दोनों में एक है ना, प्रकाश दोनों में एक है, फिर भी उनका ऐक्य नहीं हो पा रहा, क्योंकि उपाधि अलग अलग है, एक कांच की उपाधि है और एक मिट्टी की है, तो मिट्टी की और कांच की उपाधि हटा दीजिए तो प्रकाश में कोई अंतर नहीं है, अग्नि में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार हमारा विरोध इसी बात का है, हम इसलिए अपने आप को ब्रह्म नहीं मान रहे कि हमारे को ब्रह्म में शक्तिपणा सर्व अंतर्जामता उसमें जन्म स्थिति लय सब भास रही है, और अपने आप में आना जाना सुखी दुखी कर्ता भोक्तापना हमारे अंदर भास रहा है, इसी बात से हमारा ऐक्य नहीं हो पा रहा। अपने धर्मों को छोड़ दो, उसके धर्मों को छोड़ दो तो क्या बचेगा, चेतन चेतन एक है, कोई अंतर नहीं है। और तीसरा दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक राजा है और एक बकरी चराने वाला गडरिया है, गडरिया जिसको बोलते हैं, आयाड़ी जिसको बोलते हैं, उन दोनों का कभी ऐक्य हो सकता है, राजा का और बकरियां चराने वाले का कभी ऐक्य नहीं, दोनों एक नहीं हो सकते। लेकिन यदि उसके राजे की साहब जितनी उसका मतलब सामग्री है राज्य की सभी हटा दो उससे, और बकरियां वाले की बकरियां दूर कर दो, कुछ भी ना बचे उसके पास, उधर अकेला उधर भी अकेला, तो पुरुष दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों में पुरुषत्व एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब तक है वो उपाधि उनकी तब तक ऐक्य नहीं हो सकता। हम ही अपने आप को ऐसे ही मानते हैं ना कि वो स्वामी है हम सेवक हैं, स्वामी और सेवक दोनों एक नहीं हो सकते कभी भी, जब तक उनकी उपाधि बनी रहेगी कि ये मालिक है और ये नौकर है, एक नहीं हो पाएंगे ना। तो जब उनकी उपाधि हटा दीजिए सेवक स्वामी भाव हट जाएगा तो दोनों एक हो जाएंगे। हम लोग जब तक कर्म करते हैं भक्ति करते हैं उपासना करते हैं तब तक हमारा ऐक्य नहीं होता, कर्म जो है वो भी द्वैत में होता है, कर्म भी उपासना भक्ति भी द्वैत में ही होती है, ऐक्य मान के भक्ति नहीं होती ना, उसको स्वामी मानना पड़ता है, अपने आप को सेवक मानना पड़ता तभी उपासना होती, नहीं तो उपासना नहीं हो सकती। जब तक हमारा कोई उपास्य नहीं होता तो हम उपासना किसकी करेंगे, अपने आप को उपासक मानेंगे और उसको उपास्य मानेंगे तभी उपासना होती है, सेवक स्वामी भाव रहता है ना। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो ऐक्य नहीं मांगते, मांगते ही नहीं ऐक्य, वो उनको केवल प्रेम चाहिए, उनको सेवक स्वामी भाव चाहिए। वो कहते हैं राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे, मेरे को तेरे चरणों की प्रीत चाहिए, मेरे को राज भी नहीं चाहिए मुक्ति भी नहीं चाहिए। वो मुक्ति भी नहीं मांगते क्योंकि मुक्ति का अर्थ होता है ऐक्य हो जाना, उनको उसी में आनंद है कि वो स्वामी बना रहे हम सेवक बने रहे। वो कभी वो कहते हैं मुक्ति मुक्ति की हमारे को जरूरत नहीं है, मुक्ति के बाद में उपासना हम कहाँ करेंगे, कहाँ आनंद लेंगे आपके चरणों में बैठने का, जहाँ अपनी आपकी लीला देखने का, हमारे को आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं ना, अलग अलग उसकी लीला का ध्यान करते हैं, उनको उसी में आनंद रहता है, इसलिए वो मुक्ति नहीं चाहते कभी भी, मुक्ति से भी अलग रहते हैं। तो जो मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति के बाद समाप्ति हो जाती है ना, तब लीला कुछ नहीं बचती, फिर एक ही हो जाता ना, जिसते उपजा नानका सोई फिर हुआ, कुछ भी नहीं बचता। तो ये कहते हैं कि ऐक्य तभी होगा जब उपाधि हटानी पड़ेगी ना, तो भक्त और भक्त का एक मतलब प्रियतम होता है ना, तो दोनों अलग अलग रहते हैं। भक्त अपने जगह भक्त ही रहना चाहता है, वो कहता हम आपको प्रीतम ही बना करके रखेंगे। तो जब भक्त अलग रहेगा तो प्रीतम अलग रहेगा, दोनों एक नहीं हो सकते। भक्त अपनी उपाधि छोड़ेगा तभी वो प्रीतम का रूप हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। एक दृष्टांत दिया किसी महात्मा ने कि जंगल में ना एक कोई पत्थर की शिला थी, जंगल में मुदाद शिला उसका नाम है, मुदाद शिला शिल पत्थर, उसमें जो भी जानवर आकर के देखता उसको अपना मुंह दिखता था, ऐसा पत्थर था वो, जंगल में पड़ा था, सभी जानवर उसमें आकर के अपना मुंह देखते थे। तो कहते उस पत्थर ने सोचा एक बार कि इतने जहां जानवर हैं सभी जो है ना सभी मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरे को एक ही किसी के साथ प्रेम करना चाहिए, सभी के साथ नहीं, एक को मैं अपना प्रीतम बनाऊं। उसने शिला ने सोचा कि एक को मैं अपना प्रीतम बनाती हूं, सबको नहीं। तो उसने सभी जानवरों को देखा कि सबसे सुंदर कौन है, सबसे सुंदर उसको मोर लगा, मोर सब बहुत सुंदर होता है ना, तो मोर को उसने कहते अपना प्रीतम मान लिया, अकेले मोर को। तो उसने मोर का ही ध्यान करना शुरू किया कि जो कुछ है वो मोर ही है मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि कोई जो जानवर आने लगे किसी को अपना मुंह नहीं दिखता, उसमें पहले दिखता था मोर आता था तो मोर को दिखता था, जो भी जानवर आता उसको मोर ही दिखता था, उसमें अपना मुख नहीं दिखता था। उसी मुदाद शिला के बीच में जो भी जानवर आकर के देखे उसको मोर ही दिखे, अपना मुख नहीं उनको दिख रहा, क्योंकि उसने मोर को अपना प्रीतम मान लिया, सब जगह से अपनी वृत्ति हटा के केवल मोर को अपना प्रियतम मान लिया। सभी जानवरों ने बोला मोर को जा करके कि वो तो केवल आपको ही अपना प्रियतम मान बैठी है और किसी को नहीं। तो मोर प्रसन्न हो गया, कहते मोर जब उसके पास आया तो उसी समय कहते मोर को देखते ही वो पिघल गई, एकदम पिघल गई, पानी हो गया उसका, क्योंकि उसी का रूप हो गई ना वो, तो मोर ने उसको पी लिया पूरी को, तो प्रियतम का रूप ही हो गई वो। जिसका ध्यान करता है आदमी ना उसी में समाहित हो जाता है, एक बार प्रीतम मान लेता है ना जिसको, उसको फिर और कुछ नजर ही नहीं आता है, वो कहीं में दिखता है उसको, हरेक स्त्री पुरुष में पशु पक्षी में केवल अपना प्रीतम ही नजर आता है। इसलिए बुल्ले शाह ने भी लिखा ना सीधे शब्दों में भी, रांझा रांझा कर दीने में आपे रांझा हुई, हीर को और कुछ दिखता ही नहीं था, उसको कोई भी पूछता तो उसको जब जगह रांझा ही नजर आता, क्योंकि उसने रांझे को अपना प्रीतम मान लिया और उसका ही रूप हो गई वो, उसकी वृत्ति मतलब रांझाकार हो गई। उसी प्रकार जब ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उसके साथ ऐक्य करते हैं, तो सभी विरोध हटा करके जो भी हमारे बीच में आएगा ना, जब उसके साथ ऐक्य करना होता था जो भी बीच में प्रतिबंध पड़ता है उसको हटाते जाते हैं, भाई ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है। जिस ब्रह्म को हमने एक बार मान लिया, हम उसके बीच में जाना चाहेंगे तो बीच में जो ही आएगा उसको हटाते जाएंगे, अंत में फिर केवल ब्रह्म ही बचेगा। जब हम उसमें जाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, तभी तक है जब तक बीच में पर्दा है, जब पर्दा हट जाएगा तो फिर जब उसके सामने आते ही उसके अंदर चले जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। जैसे नमक की ढेली होती है ना, नमक का ढेला होता है वो तभी तक नमक का ढेला है जब तक समुद्र में नहीं जाता। नमक के ढेले को कहोगे तुम समुद्र का अंत लेकर के बताओ, नमक के ढेले को आप समुद्र में फेंको, उसको कहो अंदर से कुछ उसका हाल चाल आकर के बताओ तो आएगा वो, नमक का ढेला कभी वापस नहीं आएगा, वो वहां जाते ही उसका रूप हो जाएगा, आएगा कहां से वो। जब तक वो बाहर है तभी तक वो नमक का ढेला अलग से है, जब समुद्र में गया तो बाहर नहीं आएगा, बताने नहीं आएगा कुछ भी वहां क्या है, आएगा ही नहीं। तो जब हम जब तक हमारी वृत्ति विषयों में घूम रही है ना, जब तक विषयों का हम चिंतन करते हैं तभी तक हमारे को जितना बंधन दिखाई पड़ता तभी तक है। जब ब्रह्माकार हमारी वृत्ति हुई उसी समय जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि अग्नि जितने कास्ट में होती, जितनी लकड़ियों में होती है, पहले वो लकड़ी को जलाती है और उसके बाद क्या होता है, लकड़ी को जला करके स्वयं ही सामान्य अग्नि में मिल जाती है, कहीं नहीं दिखती। वो लकड़ी को जलाया उसने और जलाने के बाद कहाँ गई, वो सामान्य अग्नि में चली गई, वो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया। वो विशेष अग्नि है ना जो उसको जलाती है, सामान्य अग्नि में चलेगी। पहले भी बात चली थी विशेष और सामान्य की, जब तक विशेष है तभी तक ये सब कार्य व्यवहार हो रहा है ना, जब सामान्य हो जाएंगे तो कार्य व्यवहार सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने का मतलब है अपने आप होता रहेगा, करना नहीं होगा ना, अकर्ता होकर के नहीं होगा। जब तक शरीर है तब तक चलता तो रहेगा व्यवहार, लेकिन कर्ता मान के नहीं चलेगा, स्वभाविक होता रहेगा। तो ये कहते हैं कि ये जो दृष्टांत दे रहे हैं ना, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक उपाधि रहेगी तब तक ऐक्य नहीं हो सकता। उपाधि छोड़ देंगे, उपाधि और उपाधि के द्वारा भासने वाले धर्मों को छोड़ देंगे, तब हमारा ब्रह्म के साथ ऐक्य होगा। और जितनी उपाधि हमारी भास रही है ना, वो सारी अविद्या के कारण, और ईश्वर में जो धर्म भासते हैं वो माया के कारण। तो माया जब कहते हैं, नामदेव जी ने यही बात कही है ना कि माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई, चित्र विचित्र प्रकार की माया जो है उसने सारे संसार को विमोहित कर रखा है, बिरला बुझे कोई। कोई कोई इसको जानता है बात को कि ये सब माया का खेल है, कुछ हुआ नहीं है। जो संसार में दिखाई पड़ता है ना, कोई बिरला मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित जपति सिद्धाये, जतताम्पि सिद्धा नाम कश्चन माम व्यक्ति तत्वतः। ये भगवान में कहते हैं कि हजारों में कोई एक ऐसे होते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों मनुष्यों में कश्चित कोई कोई यतति, कोई कोई यत्न करता है सिद्धाये, मुक्ति के लिए कोई कोई यत्न करता है। तो यतताम्पि सिद्धा नाम, जो सिद्धि को प्राप्त करने वाले यत्न करने वाले लोग हैं, कश्चन माम व्यक्ति तत्पता, कोई मेरे को यथार्थ से जानता है उनमें से, हजारों में से कोई यत्न करने वाले हैं, जो यत्न करने वाले उसमें से कोई जानता है, सभी नहीं जान पाते, सभी नहीं जान पाते। कोई कहीं जा करके अटक जाता है, कोई कहीं जा करके अटक जाता है, थोड़ा सा किसी ने ध्यान करना शुरू किया तो उसी में मस्त हो जाता है वो, उसको लगता है कि मेरे को बस प्राप्त हो गया। किसी ने शब्द को सुनना शुरू किया तो शब्द में ही अटक जाता है, क्योंकि शब्द का कान का विषय है शब्द, उसी में मस्त हो जाता है वो, आगे नहीं जाता वो। कोई रूप को देखने में मस्त हो जाता है, वो आंखों के विषय में फंस जाता है। जैसे मतलब ध्यान करना हमने शुरू किया मूर्ति का, तो वहीं पर अटक जाते हैं, आगे नहीं जाते। जब तक मूर्ति का ध्यान करते रहेंगे तब तक तो शांति रहेगी, जब मूर्ति हटी उसी समय फिर वही हाल, क्योंकि द्वैत है ना वो, तो मूर्ति का केवल हमारी वो विषय का ध्यान है हमारा, मूर्ति हमारी आंखों का विषय है, जहाँ हमारे ध्यान केंद्र मूर्ति बैठी हुई है, जब मूर्ति हटेगी तो फिर वही हाल। तो ध्यान तो ऐसा करना है ना कि जो कभी जाए ही ना, आनंद तो ऐसा लेना है जो आनंद कभी जाए ना। तो जो विषय का आनंद है भले वो ध्यान के द्वारा लो आप, भले कान के द्वारा लो, भले मन से चिंतन करके विषय का रस लो, वो तो जब तक विषय है तभी तक होगा, जब विषय हट जाएगा तो वो फिर दुखी करेगा आपको। ऐसा ध्यान जो है वो थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं आप, इसीलिए ये जितने कर्म उपासना भक्ति है ना, ये शुरुआत के लिए अवस्था होती है, धीरे 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 उसके आगे जब बढ़ेंगे, ये नहीं कि भक्ति का खंडन है, खंडन नहीं है भक्ति का, इसमें खंडन की बात नहीं है, उसका वास्तविक जो यथार्थ रूप है ना, वैसे भक्ति प्रेम स्वरूपा होती है, ईश्वरानुरक्ति भक्ति का लक्षण किया नारद भक्ति सूत्र में, ईश्वरानुरक्ति प्रेम स्वरूपा, भक्ति क्यों है प्रेम स्वरूपा है, प्रेम का नाम ही भक्ति है, लेकिन वो प्रेम जो है उसको यथार्थ समझने की बात होती है कि प्रेम होता क्या है, कई बार प्रेम जो है उसको हम समझते नहीं है, कहते हैं कि प्रेम करते करते हम वो हैं, वो मैं प्रेम में बहुत अंतर होता है, लगता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं लेकिन हमारा मोह होता है। मोह की निशानी ये होती है कि उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। जो प्रेम की निशानी होती, प्रेमी हमेशा त्यागी होता है, वो कुछ चाहता नहीं है, किसी से लेना नहीं चाहता, अपने प्रियतम को देना ही चाहता है हर वक्त। जब भी उसकी इच्छा यही रहती है कि मेरा जो प्रियतम है ना उसको मैं देता ही रहूं, मांगू नहीं उससे। लेकिन जो मोह करने वाला होता है वो लेने की इच्छा करता है। जब तक उसको मिलता रहेगा तब तक उसका उससे प्रेम बना रहेगा, जिस दिन नहीं होगा उसी दिन उसका प्रेम टूट जाएगा, क्योंकि वो प्रेम होता ही नहीं, प्रेम का भ्रम होता है, मोह होता है। इसलिए संसार के लोगों से हमारा मोह है, प्रेम नहीं है। आपने देखा ये लोगों का प्रेम कितने दिन रहता है, क्यों टूट जाता है, क्योंकि प्रेम होता ही नहीं, वो होता ही उनका मोह है। जो गुरुओं से, महापुरुषों से, परमात्मा से लोग प्रेम करते हैं ना, वो कभी भी दुखी नहीं होते। कई लोग गुरुओं से, परमात्मा से भी प्रेम नहीं करते, मोह करते हैं, क्योंकि स्वार्थ जब तक रहे तब तक प्रेम थोड़ी होता है। हमारा ध्यान करने का, कर्म करने का, उपासना करने का बहुत लोगों का मतलब क्या होता, स्वार्थ होता हमारा कि हमारे को कुछ मिले। अगर कुछ और संसार की वस्तु नहीं चाहिए तो ये कहते हैं कि हमारे को शांति मिले, शांति ढूंढते हैं ना ध्यान करने में, तो शांति भी तो हमारी कामना ना शांति की, हम शांति तो चाहते हैं लेकिन जो शांति देने वाला उसको नहीं चाहते। जिससे हम शांति मांगते हैं उसको हमने कभी नहीं मांगा। हम भगवान से शांति मांगेंगे, हमारे को सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहते कि हमारे को भगवान ही चाहिए, सीधा उसी को मांग ले हम। जैसे कोई राजा से मांगता है वस्तु, कोई मंत्री से, मेरे को ये काम करा दो, ये काम करा दो, यदि वो कहे कि मंत्री को तुम ही आ जाओ हमारे यहाँ या मेरे को अपने पास ले जाओ, तो जब मंत्री के पास चला जाएगा तो उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम उसके अपने आप होते जाएंगे। हम लोग भगवान से वस्तुएं तो मांगते हैं लेकिन भगवान को नहीं मांगते। दुर्योधन और अर्जुन का यही अंतर रहा था। दुर्योधन ने कहा था मेरे को आपको अकेले को लेके क्या करना है, जब भगवान ने कहा एक तरफ मैं हूं अकेला और मैं लड़ूंगा भी नहीं, मैं खाली हथी हूं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन को बोला एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी चतुरंगनी फौज है, तेरे को क्या चाहिए बताओ, मैं रहूंगा अकेला और लड़ूंगा भी नहीं, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि हमारे को आपको लेके क्या करना, अकेले को हमारे को तो फौज चाहिए, हमने युद्ध करना है। तो कहा तथास्तु, ले जाओ फौज। अर्जुन को पूछा, उसने कहा मेरे को फौज से महाराज क्या लेना, मेरे को तो केशव, मेरे को आप चाहिए, मेरे को आपको लेना है। तो जीत किसकी हुई, जिसने भगवान को मांगा है, जिसने भगवान की वस्तुएं मांगी उसका, उसकी जीत नहीं हुई। जब खुद भगवान आ गए तो वस्तु कहाँ बचेगी। तो अर्जुन ने कहा मेरे को तो केशव आप चाहिए, बस मैं तो आपके चरणों का भक्त हूं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग जब तक मलोपासना कर्म भक्ति करते रहते हैं केवल भगवान से वस्तुएं मांगते हैं, जिस दिन भगवान को मांग लेंगे तब कुछ भी नहीं बचेगा पीछे, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। तो ये बात है कि भगवान से ऐक्य करने का मतलब होता कि भगवान को ही मांग लो कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके जितने मंत्री संतरी हैं या पहरेदार हैं उनसे हम नहीं मिलना चाहते। हमारी कोशिश तो ये है कि जो आपके बीच में मिलाने वाले हैं उनके द्वारा हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं। जब कोई पहुंच जाता है तब वो बीच वाले से मतलब नहीं रखता, कभी भी उतनी देर ही रखता है। लोग कहते हैं ना कि बस आपका काम हुआ तो आपने हमारे को बुलाना ही छोड़ दिया, तो कहते हैं आपको बुलाने का मतलब हमारा क्या था, जिससे हमने काम कराना उसके पास जाना था। तो भगवान को मिलाने वाले होते हैं ना जो, उनका भी यही मतलब होता कि आप भगवान से मिल जाओ। संत लोग आपको युक्ति बताते हैं ना, भगवान से मिलने की युक्ति बताते हैं कि कैसे कैसे आपको परमात्मा से मिलना है, ब्रह्म से मिलना है। जब आप ब्रह्म से मिल जाओगे तो जो बीच में महापुरुष या गुरु लोग होते हैं ना, उनका और भगवान का कोई अंतर नहीं होता। जब आप भगवान से ब्रह्म से मिल जाओगे तो संतों से मिल ही जाओगे अपने आप, क्योंकि वो हर हर जन तो ही एक है, उनका कोई अंतर नहीं होता ना। लेकिन मिलने की बात शरीर से नहीं होती, बात वहीं आ जाती है फिर, मिले मिलया ना, क्या बोलते हैं, हाँ मिले मिलया ना मिले, मिले मिलया जो होए, अंतर आत्मा जो मिले मिलया कही है सोए, गुरु महाराज कहते हैं मिले मिलया ना मिले, मिले मिलया जे होए, भाव जो पहले मिला हुआ है ना उसके साथ मिलने से, वो भी आत्मा से जो मिला हुआ है, अंतर आत्मा जो मिले, केवल मिलाप करने से नहीं होता कि हाँ किसी के पास चले जाओ तो मिल गए, ऐसा मिलना नहीं होता। अंतर आत्मा जो मिले मिला कही है सोए, शरीर करके मिलना नहीं होता। जो शरीर करके कहते हैं कि हम मिले हुए हैं, वो कहते हैं मिले ही नहीं है। जो अंदर से मिले हुए हैं वो भले शरीर से दूर ही रहते हैं, तब भी वो मिले हुए होते हैं। कई लोगों से हमारा प्रेम कैसा होता है कि वो हमारे से बहुत दूर रहते हैं, भले अमेरिका में बैठे हों, तब भी आप कहते हैं कि हमारे को तो लगता है कि आप हमारे पास ही रहते हैं। उनके उनके उनका आपका मिलाप ऐसा क्यों, आप अंदर से मिले हुए हैं। जैसे आज आप जहाँ स्वामी जी का जन्मदिन मना रहे हैं तो वहाँ बैठे हैं ना बॉम्बे में, तो आपको नहीं लगता होगा, आप कहेंगे कि आज हम तो आपको यहाँ मान के आपका जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे लिए तो आप यहाँ ही हैं। क्योंकि ये हमारा प्रेम है ना, ये ऐसा है कि अंदर से हम मिले हुए हैं, तो जो बाहर से होते हैं केवल शरीर करके, उनका शरीर के रहते हुए कोई स्वार्थ होता है। जो प्रेमी होते हैं जब तक शरीर रहता है उनके उपास्य का, तब तक तो प्रेम करते ही हैं, जब उनके गुरु लोग चले जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा करते हैं, उनको फिर भी नहीं लगता कि चले गए हैं, वो कहते हैं यहाँ ही हैं। भाव अंदर से मिल गए हैं ना, एक हो गए हैं, शरीर से उनका कोई मतलब नहीं। अंतर आत्मा जो मिले मिलया कहिए सोए, उसको मिला हुआ माना जाता जो आत्मा से मिला हुआ है। तो हम भगवान से ब्रह्म से हम आत्मा का ऐक्य करना है, शरीर का ऐक्य तो हो ही नहीं सकता। तत्त्वम का संशोधन यही तो है, लौकिक बातों में उसको घटाना चाहिए कि शरीर करके तो मिलन कभी हो ही नहीं सकता। जो शरीर करके मिलेगा वो बिछड़ जाएगा, क्योंकि शरीर नाशवंत है, एक दिन जाएगा। इसलिए मिलना है तो अंदर से मिलना है, अंदर का मतलब आत्मा करके मिलना है। तो विरोधी क्या है, शरीर है, हमारे इंद्रिय हैं, प्राण हैं, और इनके बीच में रहने वाले जन्म मरण भूख प्यास सुख दुख कर्ता भोगता बना, यही तो सब विरोधी है। बीच में शरीर का त्याग करो, इंद्रियों का त्याग करो, प्राणों का त्याग करो, त्याग मतलब उनकी आसक्ति छोड़ेंगे हम, त्याग का मतलब इनको छोड़ के थोड़ी जाना है कहीं, इनको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख से वहीं सब लागे, को काहू को नाही, कोई भी किसी का नहीं है। इसका अर्थ यही करते हैं महात्मा लोग कि जितने इंद्रे और प्राण ये सब अपने ही सुख से सब लागे, जब तक इनको आप विषय का रस दे रहे हैं तभी ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, को काहू को नाही। जब आपको ज्ञान हो जाता है तो कोई इंद्रा किसी का नहीं है, क्योंकि आप उनको विषय नहीं देते तो पिछड़ जाते हैं। उसी पंक्ति का अर्थ ऐसा लगाते हैं महात्मा लोग। वैसे तो कहते हैं भी सभी लोग स्वार्थ के, कहते हैं सुख में आन बहुत मिट बैठत, जो इंद्रियों का समूह था प्राणों का समूह था, जब तक उनको सुखी कर रहे थे ना आप, विषय दे रहे थे, सभी आन के बैठते आपके पास, जुड़े हुए थे आपके साथ, विपत परी सभी ही संग चाड़त। जब उनको रस जो लेते थे ना विषय का, वो विषय छोड़ने की विपता पड़ी ना इनके ऊपर, जब ओना आवत नेरे, कोई विषय आपके पास नहीं आ रहा, कोई इंद्रिय आपका साथ नहीं दे रहा, कि उनको स्वार्थ नहीं उनका पूरा हो रहा ना, आपने ध्यान हटा लिया तो उनके ऊपर विपता पड़ गई, उनको नहीं मिल रहा ना विषय, तो कोना आवत नेरे, घर की नार बहुत है, घर की नार मतलब माया उपाधि, विद्या रूप उपाधि बहुत है तजास्यो, सबसे ज्यादा प्रेम आप अपनी उपाधि से माया से विद्या से करते ना। वो कहते हैं कि घर की नार बहुत है जाता, सदा रह संग लागी, आपको छोड़ती नहीं थी वो माया रूपी जो घर की नार आपकी, तो क्या हुआ? सदा रहत संग लागी। जब ही हम सत जी है काया, जब कहते हैं जीव रूप जा ब्रह्म रूप जा साक्षी रूप ने इस काया को छोड़ा ना, इसका त्याग किया, प्रेत प्रेत कर भागी, कभी नहीं आई आपके पास में। तो ये बात है कि जब तक हम प्रेम करते हैं ना इंद्रियों से, जब तक प्रेम करते हैं प्राणों से शरीर से, तभी तक ये सब हमारे साथ में चिपके हुए हैं। जब प्रेम छोड़ देंगे तो कहते पूरा संसार जो है वो स्वार्थ के लाभ के प्रीति करता है, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो जब इनको स्वार्थ नहीं पूरा होगा, विषय को आंख को रूप नहीं मिलेगा, तो आंख कहाँ आपका साथ देगी? नहीं देगी ना। कान को शब्द चाहिए, जब शब्द सुनना आपने छोड़ दिया, उसको दिया नहीं, उसका भोजन पानी नहीं दिया, तो वो आपका साथ नहीं देगा। तब वो कहने का भाव है कि वो उनकी सत्यता आपने जब पीछे हटा ली, तो वो जड़ हैं, वो जड़ ही रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो करते ही तब हैं जब आप उनको अपने साथ में लगाए रखते हैं। जब आप अपनी सत्ता हटा लेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, वो जड़ हैं, जड़ ही रह जाएंगे। आप अपनी मस्ती में आ जाएंगे, वो सब छोड़ देंगे आपको। इसलिए जब तक हम लोग इनको पकड़ के साथ में लेकर के चलते हैं, तब तक हमारा ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो निराकार है, निरालंब है, निर्विकार है, सच्चित आनंद है। हम ही अपने आप को साक्षी रूप में सच्चित आनंद जब मानेंगे, तब ऐक्य हो जाएगा। नहीं तो सगुण का या शरीर का, देह का, इंद्रियों का जब हम अपने आप को मालिक मानते हैं या उसी को अपना रूप मानते हैं, तब तक निराकार के साथ हमारा अभेद नहीं हो सकता। ये तत्त्वम संशोधन का विषय है, जो कल हमने शुरू किया था कि ऐसे संशोधन करना है। तो संशोधन करने का यही मतलब है कि विरोधी भाग को छोड़ के जो चेतन चेतन है उसका ऐक्य करना है। जब इस प्रकार कोई कर लेता है ना, जो ऐसा कर लेता है, आगे उसका प्रकरण आता है। जो तत्त्व का संशोधन कर लेते हैं ना ज्ञानी लोग, कहते हैं उनको फिर ज्ञानियों का कोई कर्म ही रहता है कि नहीं रहता है? वो कुछ करते हैं कि छोड़ देते हैं? जब कोई ब्रह्म के साथ मिल जाता है, जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, वो रोटी खानी नहीं छोड़ता कभी भी। जब तक शरीर है भोजन करना पड़ेगा, सोना भी उसको पड़ेगा, स्नान भी करना पड़ेगा। कहते हैं भी जब उसको ज्ञान हो गया, जब कुछ बचा ही नहीं, तो उसकी क्रिया भी खत्म हो जानी चाहिए, उसका कोई कर्म नहीं। जब आप कहते हैं उसका कर्म कोई बचा ही नहीं, तो रोटी क्यों खाता है, भोजन क्यों करता, सोता क्यों है? प्रश्न उठ जाता है ना कि वो कर्म उसका, आप कहते हैं कुछ नहीं बचा, तो कर तो रहा है सब कुछ। वो ही बात कहते हैं कि उसका जो आप ये हमारे को रहस्य बताइए कि उसके कर्मों का क्या होता है। कर्म तो वो करता ही रहता है। कर्म कर्त होवे नेह कर्म, कर्म तो करता है लेकिन करता हुआ निष्कर्म हो जाता है, क्योंकि कामना नहीं रहती उसकी। वो शरीर करके नहीं कहता कि मैं रोटी खानी है मैंने, हम लोग कहते मैं भूखा हूं, वो नहीं ऐसा कहता। वो कहता है मेरे शरीर जो है, मेरे शरीर में कमजोरी है, मैं कमजोर नहीं हूं। कभी भी आप पूछिए ब्रह्म ज्ञानियों से आपका स्वास्थ्य कैसा है, वो कहते हम ठीक है, शरीर में कुछ गड़बड़ है। ये नहीं कहते हो कि मैं मेरे में गड़बड़ है, वो कहते हैं शरीर कुछ जो है ना अस्वस्थ है, मैं तो ठीक हूं। हम लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूं, वो कहते हैं मैं बीमार नहीं हूं, शरीर मेरा गड़बड़ है, मैं तो ठीक हूं। पूछ लीजिए आप स्वामी जी से, 92 साल की उम्र है उनकी, उनसे पूछिए आप, वो कहते हैं मैं तो ठीक हूं, शरीर थोड़ा जो है वो काम नहीं दे रहा अभी। शरीर नहीं ना काम देता, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। ये होती है जब वो शरीर को छोड़ दिया उन्होंने, शरीर के साथ उन्होंने कंटेक्ट जो हटा लिया है, अब शरीर को उनको पता चल जाता है कि शरीर कहाँ चल रहा है, इसको क्या हो रहा है। वो कहेंगे शरीर में गड़बड़ है, हमारे में कोई गड़बड़ नहीं है, हम तो जैसे थे साक्षी मतलब बाल्य अवस्था में, वैसे ही हम अभी भी हैं, हमारे मैं में कोई अंतर नहीं पड़ा। जो हमारी यथार्थ मैं है वो वैसी है जैसी बाल्य अवस्था में थी, ऐसे ही है। आप देखिए जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी और बच्चे की एक ही जैसी बात हो जाती है। जैसे बच्चा बार बार आपको सताता ना किसी चीज के लिए, ऐसे बुजुर्ग भी सताते हैं, उनकी वृत्ति वैसी हो जाती है। और ऐसे ज्ञानी लोग भी हो जाते हैं, बच्चे की तरह हो जाते हैं वो। जैसे बाबा राम कोयर जी थे, एक बाबा बुढ़ा जी के अंश वंश में थे भाई राम कोयर जी, उनको बाबा गुरबख्श सिंह जी भी कहते थे। उनकी जब ब्रह्म अवस्था में वो पहुंच गए थे ना, यहाँ पर रहते थे वो, तो कहते थे भी भोजन जब करना होता था ना, तो जो शिष्य लोग थे वो भोजन खिलाने लगते थे उनको, तो खाते ही जाते थे वो। तो शिष्य लोग, एक रस्सी रखी थी शिष्य लोगों ने, उनके पेट के ऊपर रस्सी लगा के कहते थे बाबा जी अभी पूरा हो गया, कहते थे ठीक है, जब तक रस्सी नहीं लगाएंगे खिलाते जाएंगे, वो खाते जाते थे। जब रस्सी लगा दी भले दो ही रोटी खाई हो, कहते महाराज जी पूरा हो गया, कहते ठीक है। उनको कोई मतलब ही नहीं, भले उनको चार मतलब कितनी रोटी खिला दो तब भी उन्होंने कहना खाते जाना। उन्होंने जब रस्सी लगा दी आपने, कह दिया महाराज पूरा हो गया, कहते ठीक है। ये बात होती है ना कि उनको कोई मतलब नहीं रहता फिर अपने शरीर से, या खाने से भी मतलब नहीं रहता। जब किसी ने दे दिया तब भी ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है। उनको ऐसे झूठा ही बोल दे कोई कि ठीक है महाराज, उन्हें कहना ठीक है कोई बात नहीं। हम लोगों को ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उनका शरीर रहता ही नहीं अपना, वो शरीर से परे हो जाते हैं। ऐसा होता है जो ज्ञानी, उसकी कहते हैं कि ज्ञानी की कर्म निवृत्ति कैसे होती है, उसके लिए बताए हमारे को कि उसके तीन प्रकार के कर्म होते हैं ना, एक संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं, और एक क्रियमान होते हैं कर्म। तीन प्रकार के कर्म हैं ज्ञानी के। कहते वो छूट जाते हैं कि नहीं, ज्ञानी का भी कर्म रहता है कि नहीं? कहते हैं ज्ञानी का कोई कर्म नहीं रहता, ना उसके संचित कर्म रहते हैं, ना प्रारब्ध रहते हैं, और ना आगामी क्रियमान में नहीं रहते। तो कहते हैं कि कैसे निवृत्ति होती है उनकी, ये कहते हैं कि निज आत्म रूप पयो जो भले ते त्रिविध कर्म मिटे सकले। तीन प्रकार के सकल कर्म उसके मिट जाते हैं, किसके? जिन आत्म रूप पयो, जिसने आत्मा का साक्षात्कार लिया उसके तीनों प्रकार के कर्म मिट जाते हैं। आत्मा का साक्षात्कार उसने किया है, जैसे पहले भी बताया था ना कि अग्नि जो होती है, अग्नि लकड़ियों को जला करके क्या करती, भस्म कर देती है ना। तो ये कहते हैं कि तम आवृत्ति आश्रित संच ले, पहले संचित कर्मों की बात करते हैं कि जो अज्ञान की आवरण शक्ति है ना, आवरण शक्ति, अज्ञान की दो शक्ति है ना, एक विक्षेप और एक आवरण। तो ये कहते हैं कि अज्ञान उसकी आवरण शक्ति, और उस शक्ति के आश्रित संचित कर्मों को लेकर जो संस्कार थे उसके अंदर, अज्ञान की आवरण शक्ति को लेकर के ही कर्म किए ना, और कर्मों के संस्कार कहाँ बैठे हैं, उसी आवरण में बैठे हैं। और निजात्म रूप बोध रूपी जो अग्नि है ना, जब जली है ना उसके अंदर, तो उसने पूरे संचित कर्म जला दिए, अंदर बैठे थे ना संस्कार रूप में। तो जब आपके अंदर जो साक्षात्कार आत्मा का हुआ, आत्मा का साक्षात्कार रूपी जो अग्नि जब जली आपके अंदर, तो भस्म का सात गुरु तेर जना कहा है ना भगवान ने, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, ज्ञान रूप अग्नि जब जली तो दग्ध कर्माणी, सभी कर्मों को उसने दग्ध कर दिया। अर्जुन, इस प्रकार ईंधन जो है, लकड़ी जो है उसको कहते हैं अग्नि जला करके भस्म कर देती ना, उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी अग्नि जली ना, तो ज्ञान आने दग्ध कर्माणी, सभी कर्मों का नाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यते सर्व संशयाः, भगवती श्रुति कहती है कि जब आपकी चेत जड़ ग्रंथि का भेदन हुआ, भिद्यते हृदय ग्रंथि तो छिद्यते सर्व संशयाः, जितने संशय थे छिद्यन्ते, सभी काट गए। क्षीयते चास्य कर्माणि, जितने कर्म थे क्षीयते, सभी का नाश हो गया। तस्मिन् दृष्टे प्रावरे, उसका एक ही उपाय है, सिद्धांत क्या है, कभी कब ऐसा हुआ, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावार से रहित परमात्मा का जब दर्शन हुआ आपको, तब ये सब कुछ हुआ। जब आपका साक्षात्कार हुआ ब्रह्म के साथ, तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, सबसे पहले तो ये काम हुआ कि हृदय में जो चेतजड़ ग्रंथि पड़ी थी, कह रहे थे ना तुलसीदास कि चेतजड़ ग्रंथि जो है वो पड़ गई आपके अंदर, यद्यपि मृषा, वो कहते हैं चेतजड़ की ग्रंथि पड़ गई, चेतजड़ की ग्रंथि, ग्रंथि मतलब गांठ, गांठ बंधी हुई आपके अंदर, ये चेत है ये जड़ है, वो गांठ इतनी कठिन है कि छूटती नहीं है। यद्यपि मृषा, उन्होंने कहा यद्यपि ये गांठ जो है मिथ्या है, क्योंकि अज्ञान के कारण है, छूटत कठिन नहीं, फिर भी छूटती नहीं है। तुलसीदास महाराज कहते हैं चेतजड़ की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा है, तो कहते मिथ्या, छूटत कठिन नहीं, छूटती नहीं है, क्योंकि जब तक आवरण का, आवरण की निवृत्ति नहीं होती उसका कार्य निवृत्त हो ही नहीं सकता। तो जब कहते हैं श्रुति कह रही है कि तस्मिन दृष्टे परावरे, दृष्टे मतलब साक्षात, जब आपने साक्षात्कार किया ब्रह्म का, परावार से रहित का, तब पहले ये काम हुआ विद्यते हृदय ग्रंथि, सबसे पहले हृदय की जो ग्रंथि थी ना वो टूट गई। जब वो ग्रंथि टूट गई तो सिद्धते सर्व संशया, जितने संशय थे सभी सिद्धंते कट गए, कुछ भी नहीं बचा। जब चितगढ़ ग्रंथि चले गई, संशय खत्म हो गए, तो फिर कहते छियते चास्य कर्माणी, जितने कर्म थे छियते, सभी का नाश हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, इस त्रिविध कर्म मिटे सकले, उसके तीन प्रकार के कर्म सभी मिट गए। तो कहते हैं कि जब आवरण के आश्रित जो ना आवरण शक्ति और अज्ञान, उसके आश्रित संचित कर्म को लेकर जो आपके अंदर संस्कार पड़े थे ना, जब आपके अंदर ज्ञान रूपी अग्नि जली, तो वो संचित कर्मों के संस्कार ही खत्म हो गए। संचित कर्म थोड़ी आपके अंदर बैठे हैं, उनके संस्कार बैठे हैं। कर्म तो जब आपने किया उसी समय नष्ट हो जाता है, जो हम कर्म करते हैं वो कर्म थोड़ी बचता है, उसका संस्कार हमारे अंदर बैठ जाता है, वो संस्कार खत्म हो गए। तो फिर कहते हैं कि चेतजड़ गांठ विभेद भले, दृढ़ राग द्वेष कषाय गले, वो तो संचित कर्म की बात हुई। उसके बाद कहते हैं कि चेतजड़ ग्रंथि रूप जो हमारे अंदर अन्योन्य ध्यास पड़ा था, अनात्मा का और आत्मा का ध्यास पड़ा था ना, वो भी, और भेद भ्रांति, संग भ्रांति, भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, ये जितनी भ्रांति थी सब इसी निज आत्म बोध रूप प्रज्वलित अग्नि में जल जाती है, कुछ भी नहीं बचता। और जो हमारे अंदर दृढ़ राग द्वेष के संस्कार पड़े थे ना, वो भी गल जाते हैं। दृढ़ राग द्वेष कषाय गले, वो भी कहते जब अग्नि जलती है ना तो पिघल जाते हैं, वो जो हमारे अंदर बर्फ की तरह थे ना, वो जब अग्नि जलती है बर्फ की तरह बैठे हुए थे अंदर, राग द्वेष, जैसे बर्फ होती ना ढेला, इस प्रकार पड़े जब अग्नि जली तो वो कहते गल गए, पिघल गए, वो कुछ भी नहीं बचा। जल में जब लिप्त न कंज दले, कैसा हो गया फिर ज्ञानी का हृदय, कैसा हो जाता है, जिस प्रकार जैसे जल में कमल नरालम मुर्गाई ने साने, जल में जैसे कमल होता ना कमल, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, कैसे निर्लेप रहता है, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदैव निर्लेप रहता है, जिस प्रकार जल में कमल रहता है, वो जल में रहता हुआ उसको जल से स्पर्श नहीं करता, जल उसके ऊपर आता भी तो तिलक जाता, उसके ऊपर रहता ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जल में जब लिप्त ना कांज दले, जिस प्रकार कांज कहते कमल का दल जो पत्र है ना, जिस प्रकार वो लिप्त रहता है ना, पर से ना आगामी, उनके संचित भी नष्ट हो गए, जो आगामी कर्म थे वो ऐसा हो गया, करते हुए भी ऐसा हो गया, जैसे जल में कमल रहता है तो उसको जल में रहते हुए जल स्पर्श नहीं करता, ऐसे हो गया उनको, जो उनके क्रियमान कर्म है वो इस प्रकार करते हुए उनको उनका फल नहीं मिलता, तो संचित भी गल गए और क्रियमान उनको असर ही नहीं करते, बाकी बच गए प्रारब्ध। अभी प्रारब्ध कर्म तो बचे है ना, प्रारब्ध का अर्थ होता है कि जिस शरीर, जिस कर्म से हमारा यह शरीर शुरू हुआ है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो कहते हैं प्रारब्ध किसी ब्रह्म ज्ञानी की भी नहीं मिटती, ब्रह्म ज्ञान से नहीं मिटती, वो भोगनी ही पड़ती है। हम लोगों को ही भोगनी पड़ती है, ब्रह्म ज्ञानी को भी भोगनी पड़ती है, उसका भोग से ही नाश होता है। प्रारब्ध कर्म उसके भी नहीं मिटते, ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं मिटते, क्योंकि वो कर्म जो है ना वो फल देने के लिए शुरू हो गए। जैसे आपने पंखा छोड़ा है ना पंखा, जब आप पंखे का स्विच बंद कर देते हैं जब तक वेग है तब तक रुकता नहीं है, वो घूमेगा ही, वेग समाप्त होगा तभी रुकेगा पंखा, स्विच बंद करने पर भी नहीं रुकता। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी जो है ना उसको जिस दिन ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना उसी दिन वो मुक्त हो जाता है, लेकिन जो उसके प्रारब्ध कर्म है उसके द्वारा उसका शरीर चलता रहेगा जब तक है। वो पंखे की तरह जैसे पंखा घूम रहा है, स्विच तो बंद हो गया लेकिन पंखा वेग से घूम रहा है, तो उसी दिन मुक्त हो गया जिस दिन उसको ज्ञान हुआ। शरीर से उसका मतलब नहीं है, प्रारब्ध के वश वो चल रहा है शरीर, इसलिए उसको बोलते हैं जीवन मुक्त, जीता हुआ मुक्त है, जी भी रहा है उसका शरीर चल रहा है लेकिन मुक्त है। जिस दिन उसकी प्रारब्ध समाप्त होती है उस दिन क्या हो जाता है, विदेह मुक्त हो जाता है उसको, विदेह मुक्ति। दो प्रकार की मुक्ति यही है ना, वो जीता हुआ मुक्त हो गया कि अभी उसका शरीर जो है ना अलेश लेश विद्या है, उसमें थोड़ी सी अविद्या है शरीर करके, तो जिस दिन उसका शरीर छूटा बस न तस्य प्राण कुत्रा कुत्क्रामंती। ये कहती है श्रुति कि ब्रह्म ज्ञानी के प्राण कहाँ जाते हैं, न तस्य प्राण उत्क्रामंती, उसके प्राण कहीं नहीं जाते, तस्में लेवलीयते, यहां वो बैठा होता है वहां ही लीन हो जाते हैं, कहीं नहीं जाते। हम लोगों के जाते हैं, अज्ञानी लोगों के प्राण जाते हैं, सूक्ष्म शरीर जाता है दूसरे शरीर में, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का कहीं नहीं जाता। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। इस प्रकार उसके तीनों कर्म जो है वो नाश हो जाते हैं। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।